रात की क्लास चल रहा था 4/11/1966 तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी बाबा बच्चों से जो चाहना करते हैं ऐसे जादू करते नहीं हैं। फिर बाबा क्या करे? क्या विचार है? अभी कहाँ जाते हो? अभी बैठो, 7 रोज पक्का हो जाओ। नहीं तो फिर भूल जाएंगे। यहाँ से बाहर गया और भूल गया। माया थप्पड़ लगा के बुलाए देगी। तो कोई को समझाओ तो बात ही ऐसी करनी चाहिए कि माया और रूहानी बाप की लड़ाई है। रूहानी बाप जिस्मानी बाप में आया है, रूह का परिचय तो बेसिक में लिया, रूहानी कम जिस्मानी बाप का भी परिचय देना चाहिए। साकार मुकर्रर रथ में आए हुए रूहानी बाप का परिचय देना चाहिए। बात ही ऐसी करनी चाहिए। अब पता नहीं क्या तुम लोगों के पैर थरकते हैं कि क्या करते हैं, जब किसको समझाते हो। विकर्म समझते हो क्या? किसी ने कहा जी बाबा, कितना सहज है समझाना। और ये त्रिमूर्ति का चित्र बिल्कुल इजी है। इस चित्र में ऊंचे से ऊंचे करतार का परिचय देना चाहिए। इसलिए मैंने पूछा, अभी ये चित्र है, कौन सा? त्रिमूर्ति का ये चित्र है और त्रिमूर्ति में भी जो चित्र हैं, उनमें ये चित्र मुख्य है। विचित्र भी है, विचित्र भी है। विचित्र माना चित्र के विपरीत। त्रिमूर्ति के चित्र में ये चित्र मूर्ति भी है अमूर्त भी है, इसलिए मुख्य चित्र है। जिसके लिए गीता में इशारा दिया है अव्यक्त मूर्तिना, कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है और मूर्ति भी है। अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं है, इस मूर्ति में जो मूर्ति तो है, लिंग मूर्ति कहा जाता है, परंतु नाक आंख कान हाथ पांव इंद्रियां आदि नहीं है। देह का और कोई अंग नहीं है सिवाय एक लिंग के, और मेरा लिंग ही पूजा जाता है। देवताओं के अन्य इंद्रियों की पूजा होती है, हस्त कमल, नेत्र कमल, पाद कमल, मुख कमल, परंतु मेरी सिर्फ लिंग इंद्रिय की पूजा होती है। इसलिए कहते हैं कि ये इस दुनिया में सार्वभौम मूर्ति है, सारी दुनिया की खुदाइयों में इसकी यादगार मूर्तियां मंदिर मिली है। मनुष्य सच्चे रूपी झाड़ में गोलमाल लगी है, उस झाड़ में ऐसे नहीं समझा सकेंगे। क्यों? क्योंकि उस झाड़ में जो भी 500-700 करोड़ पत्ते हैं, वो सब मूर्त रूप हैं। देवताई रूप में, मनुष्य रूप में, राक्षस रूप में, सब मूर्त रूप हैं। कोई भी मूर्त ऐसी नहीं है। चैतन्य मूर्ति जो अमूर्त हो, ये समझाने का है बिल्कुल अच्छी तरह से। देवात्माएं हैं, बल आत्मिक स्थिति में रहती है, परंतु ज्ञानेन्द्रियों में जो शेष इंद्रिय है आंख, उस आंख का तो सुख लेती है, कितने ही उच्च कोटि के देवताएं हों। इंद्रिय का सुख लिए बगैर रह नहीं सकती है। इसलिए 16 कला से 14 कला की ओर जाते हैं। सूर्यवंश से चंद्रवंश में जाते हैं। फिर द्वापर युग से मनुष्य बन पड़ते हैं। मन चंचल हो जाता है, मन के बसीबूस हो जाते हैं। बल दसो इंद्रिया बड़ी प्रबल हैं, मूर्त रूप हैं। व्यक्त हैं। इन आंखों से देखने योग्य हैं, परंतु उन दसों इंद्रियों से प्रबल मन है, जो 11वीं इंद्रिय है, बड़ा प्रबल है, परंतु मूर्त रूप है या मूर्त देखने में आता है, अव्यक्त है। मन से भी प्रबल है, हर मनुष्य आत्मा में बुद्धि है, वो भी अमूर्त है। इसलिए मन और बुद्धि दोनों का मेल मनुष्य कहा जाता है। अब देखो, तुम तो कुमार कुमारियां हो, देखो इतने सेंटर से हैं सब कुमार कुमारियां। तो हम जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो देखो फिर विश्व का राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। सारे विश्व का राजकुमार राजकुमारी, ये राजयोग है। जिससे महाराज कुमार और महाराज कुमारी बनते हैं। हम जानते हैं कि हम विश्व के महाराज महाराज कुमारी बनने के उद्देश्य से आए हैं। अभी बाबा आया हुआ है तो वो क्या पढ़ाएंगे? इंद्रियां, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, व्यक्त हैं या अव्यक्त हैं? व्यक्त भाव है, व्यक्त भाव का सुख लेने के लिए नहीं पढ़ाने आए हैं। वो व्यक्त भाव विनाशी देह का अंग है, देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी और उन दसों इंद्रियों का सुख भी विनाशी। सुख लेते लेते देवताएं भी नीचे गिरते जाते हैं, आखिर कलाहीन बन जाते हैं। तो जो अमूर्त भगवान है, अव्यक्त भगवान है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जो इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अति सूक्ष्म आत्माओं का बाप है वो, क्या पढ़ाई पढ़ाएंगे। व्यक्त भाव में आने की पढ़ाई पढ़ाएंगे, वो बेहद का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। वेद का वर्षा की बात पढ़ाता है, वो वेद का वर्षा है जो हद की देह की दुनिया पंच तत्वों की दुनिया और व्यक्त भाव की दुनिया से परे ले जाने आया हुआ है, अव्यक्त धाम में ले जाएगा, आत्मलोक में ले जाएगा। तो बाबा अब आया हुआ है, वो अव्यक्त धाम आत्माओं का धाम, आत्माओं के बाप का धाम, ऊंचते ऊंचे धाम है जिसे शांति धाम कहा जाता है। वेद का वर्षा है परंतु निराकार आत्माओं का निराकारी वर्षा है, निराकार आत्माएं साकार बने बगैर कोई सुख नहीं ले सकती। इसलिए वो निराकार बाप निराकार धाम से आकर साकार मनुष्यों के बाप में प्रवेश करता है और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। ताकि आत्मा रूपी बच्चों को शांति से भी ऊंचा जो सुख है, जो सुखदाम में प्राप्त होता है, जहां आत्मा भी रहे देह भी रहे और सुख भी अनुभव हो, तो दोनों बाप मिलकर के वेद का सुख का वर्षा देते हैं। उसे कहते हैं जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्त भी रहे। अब थोड़ी सी बात में देखो तुम समझ नहीं सके। क्या थोड़ी सी बात? जो बेसिक ज्ञान में मिलती है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, क्या नहीं समझ सके? ज्योति बिंदु एक जैसे, ज्योति बिंदु आत्माएं सुख दुख भोगती हैं, जन्म मरण के चक्र में आती हैं। आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। आत्मा त्रिकालदर्शी नहीं है। पूर्व जन्मों की तो बात ही छोड़ो, इस जन्म की भी बहुत सी बातें भूल जाती। तो जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, सभी अव्यक्त हैं, वो आत्माएं अपने बाप से कैसे भिन्न हैं? आत्माओं का बाप दुख हरता है, सुख करता है। दुखों का हरण करके अपने धाम में ले जाता है, परंतु वहां आत्माएं जड़वत शांत स्वरूप में रहती है। परंतु आत्माएं तो चैतन्य है ना, चैतन्य आत्माओं की चेतनता का अनुभव तब होता है जब पांच तत्वों की दुनिया में आती है, पंचभूतों की दुनिया। साकार मनुष्यों की दुनिया तो मनुष्यों की दुनिया का बाप वो भी बेहद का बाप है, परंतु जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, ऐसी बात नहीं है। वो एक ही बाप है मनुष्य सृष्टि का, जिसका न जन्म होता है और न मृत्यु होती है। ऐसी स्टेज कब बनती है? जब रूहानी बाप इस सृष्टि पर आते हैं, बताते हैं कि तुम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा हो, इसलिए सब भूल जाती हो। मैं तुम्हारे आगे पीछे जन्मों को नहीं भूलता, तो मैं तुम्हें आकर ये ज्ञान देता हूँ कि तुमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। ये अंतर है मनुष्य आत्माओं और परमपिता शिव की आत्मा में। शिव की आत्मा का नाम ही शिव है, बिंदु का नाम शिव है। मनुष्य आत्माएं भी ज्योति बिंदु है, परंतु उनके शरीर का नाम है। शरीर के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा उनका नाम पड़ता है काम के आधार पर। परमपिता परमात्मा शिव आत्म रूप में स्थित रहता है तो अकर्ता है, मनुष्यों के बाप एडम या आदम में प्रवेश करता है तो कर्ण करावनहार कहा जाता है। कर्णहार भी है और करावनहार भी है। करणहार ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा इस सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ, जगत माता कहो, परंतु बाप नहीं। जगत पिता नहीं, जगत पिता में है तो करणहार भी, परंतु स्वयं करे या न करे लेकिन करावनहार जरूर है। खुद करे या न करे लेकिन बच्चों से जरूर करा के छोड़ेगा। तो बताओ वो ब्रह्मा रूप और 500-700 करोड़ मनुष्यों का पिता रूप प्रजापिता, दोनों में पावरफुल कौन हुआ है? थोड़ी सी बात में देखो तुम समझ नहीं सके। जैसे देहधारी धर्म पिताएं हैं, जो द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं, सिर्फ निराकार को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन नहीं, जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये एक से बनती है या कम से कम दो से बनती है। तो एक निराकार बीज आत्माओं का बाप, या मनुष्य सृष्टि का बाप, साकार बाप, दोनों ही आत्मा तो हैं, परंतु अकेला कुछ भी नहीं कर सकते, न निराकार अकेला कुछ कर सकता है और न साकार अकेला कुछ कर सकता है। कब करते हैं? जब वो निराकार साकार में प्रवेश करता है, निराकार साकार को भी आप समान बना देता है। वो बनाता है या साकार मनुष्य सृष्टि का पिता स्वयं के पुरुषार्थ से बनता है निराकार। असलियत क्या है? बनाता है, बनाने वाला रचयिता कहा जाता है। बनने वाली रचना कही जाती है। रचयिता और रचना का संबंध ये साबित करता है कि दोनों साकार हैं, निराकार हैं, या साकार निराकार का मेल। लेकिन सुप्रीम सोल शिव वो सदा निराकार है, साकार सृष्टि पर भी आता है, साकार मनुष्य तन में आता है, तो भी स्थिति में निराकार स्थिति में रहता है या वास्तव में साकार बन जाता है? है वो निराकार ही है। उसको संग का रंग नहीं लगता। जो साकार शरीरधारी मनुष्य आत्माएं हैं उनको संग का रंग भी लगता है। तो किसी को ज्यादा लगता होगा, किसी को कम भी लगता होगा। तो सबसे कम किसको संग का रंग लगता है? अब्राहम को, बुद्ध को, क्राइस्ट को, गुरु नानक को, इतने धर्म पिताएं हैं, अपने अपने धर्म आत्माओं के पिताएं। उन धर्म पिताओं में जो बहुत पावरफुल होते हैं, उनके बीच में कौन सा ऐसा पिता है, धर्म पिता, जिसको सबसे कम संग का रंग लगता है? कोई है या नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता है? किस आधार पर हो सकता है? आर्थिक स्थिति के आधार पर ऐसा हो सकता है सदा काल के लिए निरंतर आत्म की स्थिति में स्थित हो जाए तो कोई के संग का रंग नहीं लग सकता। संग का रंग ही नहीं लगेगा तो नीचे गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। यही स्थिति बनाने के लिए निराकार आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते। उस अभ्यास में जो आगे आगे जाते हैं वो पावरफुल आत्मा बन जाते हैं। वो आत्माओं का बाप ही आकर के हम मनुष्य आत्माओं को आत्मा का परिचय देते हैं। तो जो आत्मा जिस समय पहली बार आत्मा का परिचय लेती है उस फाउंडेशन की बेला में ही जो अपना फाउंडेशन पक्का जमाई लेते हैं दृढ़ फाउंडेशन डाल देते हैं उनके स्मृति के अभ्यास की बिल्डिंग नीचे से ऊंची बन जाती है। हमारी आत्मा ज्यादा से ज्यादा कितने मंजिलों की ऊंचाई तक जा सकती है? अरे है 84 जन्मों की बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। ऑल राउंड पार्टधारी बन सकते हैं। कम अभ्यास करते हैं तो कब ऊंची बिल्डिंग बनेगी, ज्यादा अभ्यास करते हैं तो पूरे 84 के चक्र की बिल्डिंग तैयार होती है। कोई एक जन्म भी लेते हैं 84 के चक्र में, कोई पूरे 84 जन्म लेते हैं, कोई कम लेते हैं कोई ज्यादा लेते हैं। इन सभी के बीच सबसे पावरफुल कौन है जो पूरे 84 जन्म लेता है, एक वर्ष भी कम नहीं, महीना भी कम नहीं, एक दिन भी कम नहीं। एक दिन की कोई घड़ी भी कम नहीं। पूरा 84 जन्म तो सबसे जास्ती अनुभवी कौन हुआ? 84 जन्म लेने वाली आत्मा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अनुभवी तन में आता हूं,
और वो ही पक्का फाउंडेशन है। तो देह के 84 जन्मों का अनुभव आत्माओं का बाप लेता है, लेता है। इसलिए गीता में कहा है कि बल दुनिया में दो प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, क्षीण होने वाली शक्ति से, और दूसरा प्रकार है अक्षर, जो कभी पतित होती ही नहीं, क्षरित होती ही नहीं, शक्ति क्षीण होती ही नहीं। चाहे कैसे भी संघ के रंग में आए, परंतु इन दोनों में भी एक और तीसरी स्टेज है, जिसे गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहरत। क्या उसे क्या कहते हैं? परमात्मा ऐसे कहा जाता है। किससे टैली किया गया उस आत्मा को? है आत्माओं से टैली किया गया। सुप्रीम सोल को जो सदैव निराकार है, सदाशिव है, उसको किसी के साथ टैली नहीं किया जा सकता। वो इस दुनिया के चक्र में ही नहीं आता। जो चक्कर में नहीं आता वो किसी नंबर में भी नहीं आता। तो इस 84 के चक्र में जो आने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच जो सबसे जास्ती चक्र काटने वाला है सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता? स्व माने आत्मा, दर्शन माना आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन। 84 के चक्र का दर्शन, ऐसे चक्र को धारण करने वाली आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी। पूरा ही चक्रधारी या नंबरवार चक्रधारी? पूरा ही 84 का चक्रधारी। वो आत्मा परमात्मा नाम से जानी जाती है। कैसी आत्मा? परमात्मा। जैसे कहा जाता है ब्रह्मा अनेकों के नाम है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, परंतु परम ब्रह्म एक ही है। क्या वो भी है? परम ब्रह्म जिसके लिए शास्त्रों में भी आया हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसी को मैं नमन करता हूँ, माथा झुकाता हूँ, बुद्धि अर्पण करता हूँ। उसका नाम दिया है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये नहीं कहा एक शिव बाप, क्यों नहीं कहा है? मेरा तो एक शिव बाप, दूसरा न कोई। अरे बाप से तो वर्षा मिलता है ना, शिव बाप तो निराकार है ना, निराकार से निराकारी वर्षा चाहिए, संतुष्ट हो जाएंगे। निराकार तो निराकारी वर्षा देता है ज्ञान का। वो क्या है? ज्ञान का अखूट भंडार है। ऐसा अखूट भंडार जिसमें से संपूर्ण निकाल लिया जाए तो भी संपूर्ण ही बचता है, ऐसा ज्ञान का अखूट भंडार। वो ज्ञान ही देता है। दुनियावी और कोई वस्तु नहीं देता। तो जो मनुष्य आत्मा नंबर वार ज्ञान लेती है, सिर्फ लेती नहीं है, उसे ज्ञान की जुगाली करके गाय के बुआफिक चबा चबा कर मंथन करके उस ज्ञान को अपना बनाते हैं, तो नंबर वार अपना बनाते हैं या सब एक जैसा बनाते हैं? जिसको कहते हैं अपनी गोट तो नशा चढ़े। शास्त्र में लिख दिया है तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देकर रघुवीर। तुलसीदास ने चंदन घिसा, मंथन किया और रघुवीर अर्थात सूर्यवंशियों में जो वीर है कौन है? सूर्य, ज्ञान सूर्य, वो रघुवीर अर्थात भगवान, सुप्रीम सोल, विश्व की बात सही का तिलक देते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कहां विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं? चित्रकूट के घाट पे, जहां भाई संतन की भीड़। कैसा कूट? चित्रकूट, कूट माने पहाड़, चित्रकूट माने विचित्र पहाड़ है। वहां जो सत्य को धारण करने वाली नंबर वार सत्य अर्थात ज्ञान को धारण करने वाली संत आत्माएं इकट्ठी होती हैं उस पहाड़ पर, तो क्या भगवान कोई कैलाश पहाड़ या अमरनाथ पहाड़ पर आकर के ज्ञान देते हैं? क्या मतलब है? या चित्रकूट पहाड़ पर आकर ज्ञान देते हैं? नहीं, ये आत्मा की ऊंची स्टेज की बात है। क्या आत्मा की जो ऊंची से ऊंची स्टेज है उसको पहाड़ नाम दिया है। पहाड़ जैसी ऊंचाई, और ऊंचे से ऊंचा पहाड़ कौन सा है? हिमालय पहाड़। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, जो बर्फ का घर है। चैतन्य बाप आकर चैतन्य आत्माओं के पार्ट का ज्ञान देते हैं या जड़ पहाड़ का ज्ञान देते हैं? तो कौन है हिमालय पहाड़? है ब्रह्मा की सोल, जहां ज्ञान जल जाम होकर के रहता है, बहता ही नहीं, पत्थर की तरह जाम हो जाता है। उसको कहा है हिमालय राज, राजा भी है। क्या ऐसे नहीं कि राजा ही नहीं लेता है? और राजा ही तो दुनिया में भगवान से राजयोग सीखने वालों को ही मिलती है। परंतु वो राजा ही इस दुनिया की राजाई है, जिस दुनिया में स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। तो क्या सतयुग को ऊंचे से ऊंचा धाम कहेंगे? सुखधाम तो कहेंगे, लेकिन ऊंचे से ऊंचा धाम कहेंगे है? जिस ऊंचे से ऊंचे धाम की ऊंची स्टेज में पहले जन्म में कृष्ण सो नारायण का नाम गाया हुआ है, कीर्तन करते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। क्या कितने नाम लिए? कृष्ण नारायण वासुदेव। कृष्ण सृष्टि का पहला पत्ता, नए नए पत्ते तो बहुत सौवनिक होते हैं। 500 करोड़ पत्तों में सबसे पहला पत्ता तो कितना शोभनीक होगा। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। देवता कहा जाता है, परंतु देवताओं के बीच महादेव तो नहीं कहा जाता। कहा जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि देवताएं तो 16 कला संपूर्ण सुख भोगते हैं, लेकिन कलाओं से भी अतीत जो सुख है अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से अतीत का सुख। वो इंद्रिय अतीत सुख नहीं भूखते, बल श्रेष्ठ इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का सुख भूखते। फिर ज्ञान इंद्रियां भी तो ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ आंख, वो भी तो देह का अंग है ना, देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी। अविनाशी सुख तो नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं, तो वो अविनाशी सुख कहाँ की बात है, जहाँ आत्माएं अविनाशी सुख भोग सकती हैं। गिरती कला का सुख नहीं, वहां का अतीन्द्रिय सुख ऐसा है जो आत्मा को नीचे नहीं गिरने देता। सतयुग से जो भी देव आत्माएं त्रेता के अंत तक 16 कला या 14 कला का संपूर्ण सुख भोगती हैं, वो नीचे गिरती हैं या नहीं गिरती हैं? कलाएं उतरती हैं ना, परंतु जो ऊंचे से ऊंचा करतार गाया हुआ है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, वो ऊंचे से ऊंचा भगवान ऐसा सुख देता है जो सुख है छीन ही नहीं होता। कहां की बात है, है? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्माओं में जो उत्तम आत्मा है, उत्तम ऊंचे से ऊंची पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही डिक्लेयर होती है। वो पुरुषोत्तम युग है, कलयुग के अंत में और फिर सतयुग के आदि में है। जहां ऊंचे से ऊंची स्टेज वाले सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है। सनातन माना पुराने से पुराना, कैसा पुराना? सत्य सनातन धर्म, जिस धर्म के लिए गीता में भी गाया है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। वो स्वधर्म है ही स्वमाने आत्मा, आत्मिक स्थिति की धारणा वही स्वधर्म है। उस स्थिति से बिल्कुल विचलित न हो, ऐसे स्वरूप में टिकने वाला पुरुषोत्तम, परम पुरुष गाया हुआ है। कौन है वो परम पुरुष है? पुरुष माना ही पूरी शरीर रूपी पुरुष, शय माना शयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में भी रहे और सुख ही सुख भोगे, वो भी गिरती कला का सुख नहीं, उत्तरोत्तर चढ़ती कला का सुख भोगे, ऐसा पुरुषोत्तम ऐसा उत्तम पुरुष कौन है? प्रैक्टिकल में पाठ बजाया है तब पुरुषोत्तम है, या हवा में सिर्फ कहने के लिए है? प्रैक्टिकल जीवन में रहते हुए पाठ बजाया है, उत्तम से उत्तम पाठ, नीच पार्ट बजाने वाले की पूजा होती है या ऊंच पार्ट धारी की पूजा होती है? हैं? तो कौन है वो? त्रिमूर्ति में उसका परिचय दिया, पिछले दो चार दिनों की वाणी में ब्रह्मा मुख से बाप ने त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति का परिचय देना चाहिए? वही बात बताई, त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति है? जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में उत्तम है वो आत्मा नहीं जो 84 का पार्ट ही नहीं बजाते। कौन है? कौन है वो आत्मा जो 84 का पार्ट ही नहीं बजाते? कौन है? शिव बाप। अरे वो पुरुषोत्तम की बात है जो 84 के चक्र में भी आती है और चार सीन वाले वेद के रंगमंच पर हर जन्म में उत्तम से उत्तम पाठ बजाती है, जिसके लिए ब्रह्मा मुख से बोला है। याद आया क्या बोला? नहीं याद आया, कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाता है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है, ये नहीं कहा एक ही शिव बाप है। क्यों नहीं कहा है? हाँ, आत्माओं को वो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है, वो परम पिता है। बापों का भी बाप है। मनुष्य सृष्टि के बाप एडम आदम आदि देव का भी बाप है, परंतु उसका कोई बाप नहीं है। यहां उस पुरुषोत्तम की बात नहीं है, पुरुषों में उत्तम पार्टदारी की बात है। कौन है? राम वाली आत्मा तो दुनिया वाली समझते हैं, त्रेता में हुई। बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं वो त्रेता वाला राम नहीं। चौदह कला संपूर्ण कौन सा राम? रमिते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी जिसमें मन बुद्धि से रमण करते हैं वो राम। चित्र है हैं? जिस चित्र में, जिस मूर्ति में योगी अर्थात याद करने वाली आत्माएं उस चित्र में रमण करते हैं, उस चित्र की स्मृति में रहते हैं, थोड़ी आत्माओं की बात नहीं है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। जो थोड़ा या बहुत लेकिन इस सृष्टि के महामृत्यु काल में सब उसी की याद में रहती है। कुछ चित्र याद आता है? हैं? जोर से बोलो, गलत हो जाए कोई बात नहीं। हैं? हाँ, झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ दिखाया है साक्षात्कार के चित्रों में, आत्माओं को खींच रहा है, बिंदु बिंदु आत्माएं खींची चली जा रही हैं उस चित्र के द्वारा। आत्माएं मन मना भाव होती जा रही हैं। मन मत, मन मने मत, मना मने मन में, भव मने हो जा, मेरे मन में समा जा, वो चित्र बोलता है। सिर्फ विचित्र वाली आत्मा नहीं बोलती है, मन मना भाव कौन बोलता है? आत्माओं का बाप, उसको मन होता है। वो सोचता है या असोचता है वो नहीं कहता। मन मना भाव वो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के बोलता है, मुकर्रर रथ में आकर के बोलता है, मन मना भव। मेरे मन में समझा उस चित्र का स्वरूप मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, जो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि निराकार को याद करना सहज है। यह जन्म जन्मांतर की जो अभ्यास की रग पड़ी हुई है उस साकार रूप को याद करना सहज है, इसलिए वो साकारी भी है। वो चित्र झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, और मनुष्य आत्माएं साकारी आकारी निराकारी तीनों प्रकार की स्टेज धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती, कर सकती हैं। तो झाड़ में जो बैठा हुआ चित्र है वो आकारी स्टेज है, फरिश्ताई स्टेज है, फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं। जिन आत्माओं को खींच रहा है वो आत्माएं भी निराकारी स्टेज में टिकी हुई होती हैं या साकारी होती हैं? हैं? हाँ, या तो निराकारी या तो साकारी। उन आत्माओं को खींचने वाला मीडिया है उसको नाम दिया है पुरुषोत्तम। संगम युग के अंतिम महामृत्युकाल की स्टेज का यादगार दिखाया है। उससे पास हुए बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा सुप्रीम सोल बाप के घर नहीं जा सकती। क्या कहा? ये उसकी दादागिरी है। क्या बोला? क्या है? दादागिरी। दादा किसे कहा जाता है? बिंदु बिंदु मनुष्य आत्माओं की जो फैमिली है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उन आत्माओं में सबसे बड़ा पाठधारी कौन सी आत्मा है? अरे जिसका चित्र झाड़ के ऊपर रखा हुआ है, परमात्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। शास्त्रों में उसे विष्णु परम पद बताया गया है, विष्णु अर्थात नो विषयताल। उस विष्णु की चार भुजाएं रूपी आत्माएं सहयोगी के रूप में नंबर बार दिखाई है। कोई ऊंचे स्तर की, कोई नीचे स्तर की, कोई बाएं स्तर की, कोई दाएं स्तर की, परंतु उन सहयोगी भुजाओं को चलाने वाला कौन? उन भुजाओं को चलाने वाला उन भुजाओं में से कोई एक है या भुजाओं से ऊपर है या नीचे है? हैं? भुजाओं से ऊपर है। वो ही परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, इसलिए बोला। ये समझाने का है बिल्कुल अच्छी तरह से। क्या समझाने का है? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सा चित्र समझाने का है? है?
अरे
शंकर चित्र समझाने का है। हेलो, यादगार शिव के मंदिरों में जो मुखिया है वो बीच में रखा है और आसपास उसका परिवार रखा है देवताओं का। सभी देवी देवताएं चित्रों के रूप में दिखाए जाते हैं शिव के पुराने मंदिरों में, और उन देवताओं के बीच में एक मूर्ति है जो शंकर के रूप में शिव के नजदीक दिखाई जाती है। जिस मूर्ति का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और कोई देवात्मा, कोई मनुष्यात्मा, कोई राक्षसी आत्मा का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो शंकर को बाजू में क्यों बैठा दिया? है?
तपस्या करता है।
तपस्या माने क्या? मुरली में तपस्या का रूप बताया है। आत्मिक स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। क्या कहा? सबसे बड़ी तपस्या क्या है? आत्मिक स्थिति में रहना तपस्या है। भले कर्म करते रहो, जो प्रबलतम इंद्रिय काम इंद्रिय है उससे भी कर्म करते रहो तो भी कौन सी स्टेज में स्थिर रहो? आत्मिक स्टेज में स्थिर रहो, आत्मा ज्योति बिंदु की याद में स्थिर रहो, यही तपस्या है। ऐसी तपस्या जिसमें इंद्रियां और इंद्रियों के सुख बिल्कुल याद न रहे। इंद्रियातीत स्टेज, अतीन्द्रिय सुख में रमण करने वाला, उसी की पूजा संसार में सार्वभौम पूजा है, यादगार है। दुनिया की देश विदेश की खुदाइयों में वो ही मूर्ति सबसे जास्ती पाई गई। कौन सी मूर्ति है? शिवलिंग जिसे कहा जाता है, कहा जाता है, भक्त लोगों ने नाम दिया है शिवलिंग। शिव निराकार है या साकार? उसको लिंग होता है तो क्यों कहा शिवलिंग है? जब उसको लिंग होता ही नहीं तो अपनी लिंग से वो कर्म करेगा है? नहीं करेगा। काम से नाम पड़ता है। तो शिव बाप तो ब्रह्मा द्वारा बोलते हैं वेद वाणी में, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेद वाणी में बोला मैं तो पूजा लेता ही नहीं, लेता हूँ हैं? मैं पूजा नहीं लेता हूँ, तुम बच्चे ही पूजा लेते हो, तुम्हारी यादगारी ही पूजी जाती है, इसलिए गाय ने आप ही पूजिए, आप ही पुजारी, ये मेरा गायन नहीं है, किसका गायन है? तुम देवात्माओं का गायन है। पूजा बड़े रूप की होती है या निराकार ज्योति बिंदु सूक्ष्म की होती है? है तो जो शिवलिंग पूजा जाता है, वो वास्तव में क्या है? निराकार आत्माओं के बाप शिव को इंद्रियां होती नहीं, तो किसकी इंद्रिया क्या यादगार है? है शंकर का यादगार है। क्यों? इसलिए कि वो मन बुद्धि की ऐसी स्टेज में टिकता है जिस स्टेज में नाक आंख कान हाथ पांव ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की याद ही नहीं रहती सिवाय ज्योति बिंदु के। बाकी ऐसा नहीं है कि कर्म इंद्रिय से कर्म नहीं करता, कर्म भी करता है, अगर करता नहीं है खुद तो दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने का रिजल्ट आएगा है? जो खुद नहीं करता और दूसरों को पढ़ाई पढ़ाता है, आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरे को तरकीब सिखाएं, तो सही बात है? मास्टर सब शक्तिवान कहा जाता है, शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से कि मैं सर्व शक्तिवान हूं, परंतु मैं मास्टर सर्व शक्तिवान नहीं, मास्टर तुम बच्चे बनते हो। मास्टर कहा जाता है जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाए, तो प्रैक्टिकल में जो शिव के मंदिर में जो प्रबल काम इंद्रिय है उस इंद्रिय के द्वारा कर्म करते हुए दिखाया गया है, वो कौन सी आत्मा है जिसकी पूजा होती है? अरे बोलो भाई, हाँ देवात्माओं की ही पूजा होती है। मनुष्यों की विकारियों की पूजा नहीं होती है। तुम देवात्माओं ने कर्म करते हुए कर्मयोगी बनते हुए जो श्रेष्ठ स्थिति धारण की है उसकी यादगार है शिवलिंग, जिसे गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा है। मूर्ति तो है, देखी तो जा सकती है, लेकिन अव्यक्त भी है, अर्थात उस मूर्ति की इंद्रियां नहीं देखी जा सकती सिवाय एक प्रबल इंद्रिय काम इंद्रिय के, जिस कामेंद्रिय के लिए गए ने कामदेव को भस्म किया। पहले अपनी कामनाओं को भस्म करेगा तभी तो दूसरों को सिखाएगा। टीचर कौन बन सकता है? अरे डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा। नहीं तो नहीं बनाएगा। तो मनुष्य को देवता बनने का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया है शिव के मंदिर में। ऐसे प्रैक्टिकल स्वरूप में टिकना पड़े तब राजयोगी की उपाधि मिलेगी। जो राजयोग सीखते हैं वो ही राजा बनेंगे। राजयोग की पढ़ाई श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ाई गई है। गीता ज्ञान ही है जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है। एक ग्रंथ मात्र सभी धर्म ग्रंथों का माई बाप। श्रीमद् भगवत गीता जिसकी व्याख्या करके मनुष्यों ने उसे झूठा बनाई दिया, झूठी गीता बनाई दिया। अब सुप्रीम टीचर आता है तो ऊंचे से ऊंची गीता ज्ञान की व्याख्या देता है, बताता है कि गीता ज्ञान के द्वारा कोई हिंसक युद्ध नहीं सिखाया था, भगवान कोई खून खराबा करना नहीं सिखाता, देह और देह की इंद्रियों से बाहुबल चलाना नहीं सिखाता। वो तो आपकी किस स्थिति में टिकाने के लिए आया है, सही स्थिति में टिकने के लिए पढ़ाई पढ़ाता है, वो हिंसा की युद्ध कैसे सिखाएगा? वो तो पांच विकारों रूपी जो माया है और सब माया का सहयोगी रावण पुरुष रूप, जिन पुरुषों और स्त्रियों के रूप में वो माया आती है उस माया से युद्ध करना सिखाता है। इस युद्ध का नाम है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। ये घर गृहस्थ में रहकर ही युद्ध है। घर गृहस्थ में ही रहो और माया के पांच विकारों से युद्ध करो। पांच विकारों में भी सबसे प्रबल विकार कौन है? उन चोर डकैतों का मुखिया, बड़े से बड़ा डकैत, काम विकार। उसका साधन क्या है? काम इंद्रियां। इस महाभारी महाभारत में इस युद्ध से पसार होना पड़ेगा। हे अर्जुन, सद्भाग्य का अर्जन करने वाले अर्जुन, ईश्वरीय ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन, तू कायर मत बन, डरपोक मत बन। जो अर्जुन कहता है कि मुझे इस जघन्य पाप में क्यों डुबोते हो, कर्मयोग इससे तो अच्छा संन्यास योग ही अच्छा है। कर्म इंद्रियों से कर्म करूं और यदा कदा कहीं फेर हो जाऊं तो दुर्गति नहीं हो जाएगी। भगवान बाप कहते हैं अगर इस युद्ध में विजयी हुआ तो सारी पृथ्वी का राजभाग तेरा, और अगर हार भी गया जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा युद्ध करते करते हार गया या जीत गया, इंद्रजीत बन गया क्या,
तो भी
स्वर्ग रूपी सतयुग में ऊंचे से ऊंचा पद पा सकता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने क्या ऊंचे से ऊंचा पद नहीं पाया सतयुग में, है पाया ना। तो इस युद्ध से डरने की बात नहीं है, इसे समझने की बात है। ये माया के पांच विकारों का युद्ध है और दूरवाज खुशवाज होने का युद्ध नहीं है। सन्यासियों की तरह दूर चले गए जंगल में, अहंकार आता है कि हम बड़े पवित्र हैं, जैसे जेल में 10 साल रहने वाला 20 साल रहने वाला बाहर निकले तो ढींग हांके कि मैंने 20 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, या मजबूरी हुई। ये तो कायरता हो गई। ऐसी आत्माएं यहां भी भगोड़ी हो जाती हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ छोड़कर भाग जाती हैं और 5000 वर्ष के ड्रामा में भी विधर्मी और विदेशी बनकर के भारत पर बार बार आक्रमण करती है, आतताई बनती है और लड़ते लड़ते थक कर पूंछ दबा के भाग जाती है। हिस्ट्री क्या कहती है, विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर कितने आक्रमण किए, जितनी बार आक्रमण किए उतनी बार हार कर भाग गए या जीत गए, हैं भाग गए। तो ऐसे भगोड़ों की संख्या नहीं बढ़ानी है। कन्वर्टेड ब्राह्मण सो देवता नहीं बनना है, कच्चा ब्राह्मण नहीं बनना है, कम कलाओं वाले कच्चे देवता नहीं बनना है। वो कम कलाओं वाले कच्चे सो ब्राह्मण देवता द्वापर युग से कलयुग तक कन्वर्ट होते रहते हैं और भारत का नाम बदनाम करते रहते हैं, भारत को धोखा देते थे। धोखेबाज आत्माएं हैं, धोखेबाज दगाबाज। बाप तो कहते हैं मेरे बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे हैं, बेईमान बच्चे नहीं है। चोरी डकैती करके खाने वाले नहीं है, जैसे मुसलमान आग करता है। बाप कहते हैं ये थोड़ी सी बात है समझाने की, पहले पहले उस बाप का परिचय दो, उस बाप का। क्या कहते हैं? उस बाप का परिचय दो। दूर कर दिया या नजदीक? दूर कर दिया, भविष्य में पार्ट जारी है। इस बाप का नहीं, ब्रह्मा बाप का। मेरा परिचय नहीं, उस बाप का परिचय दो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी समझाया था, पहले पहले बाप की पहचान दो, परंतु वो आज तक भी नहीं समझ सके। चित्र तो 32 करोड़ों वाला निराकार का रखा पहले पहले प्रदर्शनी में, मेले में, और झंडे में भी लगाया। लेकिन उस चित्र की जो समझानी है गहराई की, कि वो बाप प्रैक्टिकल में, चैतन्य में स्वर की स्थापना करने वाला, बेहद के गुणों को धारण करने वाला बाप है या निर्गुण बाप है, सिर्फ निराकार है। क्या है? साकार है, निराकार है या आकारी है? क्या है? है न साकारी है, न निराकारी है और न आकारी है। मैं आकारी ब्रह्मा में, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं। इसलिए भारतवासी उसके स्वरूप को जानते हैं। रामायण में गाते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों ही रूप हैं जो कंबाइंड होकर के संसार के दुख दर्दों का हरण कर लेते हैं। इस थोड़ी सी बात को बच्चे नहीं समझ सके और न समझा पाते हैं। ब्रह्मा बाबा को ये बात फिर भी समझ में नहीं आई। क्या बात? थोड़ी सी बात में देखो तुम बच्चे समझ नहीं सके। तो ब्रह्मा बाबा क्या बोले, चलाओ दोनों बचाओ बच्चे। नहीं समझ में आता तो ब्रह्मा बाबा को क्या याद आया है, गीत बताओ बच्ची, या तो बच्ची टोली लाओ। समझाने करने का, सर्विस करने का मोस्ट इजी तरीका है, मोस्ट इजी बातें हैं समझाने की। हाँ बच्ची, ये सीधी बातें हैं ना समझाने की। क्या तो वो आत्माओं का बाप निराकार शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आता है मनुष्य सृष्टि में, तो मनुष्य सृष्टि के बाप जिसे आदम एडम आदिदेव इन नामों से पुकारा जाता है, उसमें प्रवेश करता है। और टेम्पररी नहीं, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, आदि से लेकर के मध्य से गुजरते हुए अंत तक प्रवेश करता है। तो देखो जल्दी यहां से इम्तहान पास करके, कहां से, बेसिक नॉलेज से, जो बेसिक नॉलेज यहां की पढ़ाई है, मैं आत्मा बिंदु, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई गीत गाते हैं। ये गीत गाने की बेसिक की पढ़ाई है छोटे छोटे बच्चों की, जल्दी यहां से इम्तहान पास करके फिर आकर के यहां पर उड़ जाओ। क्या अभी ब्रह्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर कहां उड़ जाओ, परम ब्रह्म तक उड़ जाओ। आ करके यहां पर उड़ जाओ, बोलो ब्रह्मा से, क्या बोलो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। क्या किससे बोलो, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों से बोलो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, हम तो इसमें लग जाए एकदम अच्छी तरह से। हमारा बाबा हमें समझाते हैं, समझती हो। बाबा किसे कहा जाता है, है? ब्रह्मा कुमारियों से पूछा, तुम से नहीं पूछा। बाबा किसे कहा जाता है, साकार और निराकार के मेल को। अगर इस साकार ब्रह्मा का शरीर छोड़ जाए, छूट जाए, तो फिर तुम बाबा किसको कहेंगे, है, किसको कहेंगे? अरे बाबा काम पूरा किए इस सृष्टि से चला जाएगा, काम पूरा करेगा या बीच में ही चला जाएगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे और साथ साथ जावेंगे। ये किसने बोला है, सुप्रीम सोल, बाप ने बोला। ये बात बाबा समझाते हैं, कौन सा बाबा है जो संगम युग में आज है कल नहीं रहेगा? विनाशी बाबा या अविनाशी बाबा है? अविनाशी बाबा समझाते हैं, मुकर्रर रथधारी समझाते हैं। तो समझती हो बुद्धि में कैसे, जैसे किसको भी सहज से सहज समझा सको। क्योंकि किसी लोग क्या वगैरह वगैरह नहीं समझेंगे क्या? क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग, वो तो अव्यक्त है, जो अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है, मने अव्यक्त मूर्ति है, मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार, वो व्यक्त भी है अव्यक्त भी है, दोनों प्रकार की यादगार है। वो क्रिश्चियन और मुसलमान लिंग को नहीं पूजते हैं, पूजते हैं है? क्यों? क्योंकि जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो उस भगवान बाप के अव्यक्त निराकारी स्टेज को नहीं पहचान पाते। सिर्फ साकारी याकारी रूप को पहचानते हैं। इसलिए साकारी एडम आदम का नाम तो लेते हैं परंतु पूरी तरह जानते नहीं है। सिर्फ एडम के फरिश्ताई रूप को जानते हैं जिसे जबराइल कहा जाता है। क्या? जबरदस्त पार्ट बजाने वाला जबराइल। वो अष्ट देवों को भी नहीं मानते जो शिव की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं। वो शिव के लिंग को भी नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं पूजते। वो इन बातों को नहीं समझेंगे। उनके धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण हैं, आधार मूर्ति या बीज रूप, वो भी इन बातों को नहीं समझेंगे। नहीं, अरे ये तो सहज से सहज बात है। जो भी देवता देवी देवताओं का पुजारी है ना, बस उनको सहज है समझाना और समझना। बाबा आगे भी समझाया है, भगवत गीता में भी है। कब समझाया है आगे है? यज्ञ के आदि में। कैसी पढ़ाई पढ़ाते थे है? श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या समझाते थे। तो बोला आगे भी समझाया है। यज्ञ के आदि में, जो आदि में सो अंत में, क्योंकि सभी भारतवासियों की श्रद्धा सिर्फ भारतवासियों क्या, सभी धर्म वाले श्रीमद् भगवत गीता का लोहा मानते हैं। तो भगवत गीता में भी कहा है मेरे भक्तों को क्या, किनको, मेरे भक्तों को, मेरे भक्तों को भगवान ज्ञान का अकूट भंडार है या भक्ति का भंडार है? तो जो है ही ज्ञान का भंडार वो भक्त बनाएगा या ज्ञानी बनाएगा? तो ये किसने कहा, मेरे भक्तों को अभी बाप कहते हैं ना, मेरे भक्तों को अभी संगम युग में बाप कहते हैं मेरे भक्तों को, सुप्रीम सोल जो गॉड फादर है, सदा निराकार है, सदा शिव है, वो कहते हैं मेरे भक्तों को, जो ज्ञान सूर्य है भक्तों को पढ़ाई पढ़ाता है, है? भक्तों को पढ़ाई पढ़ाता है या ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है? ज्ञानियों को पढ़ाई पढ़ाएगा या भक्तों को पढ़ाएगा? मेरे भक्तों को ये बात अभी बाप कहते हैं ना, कौन सा बाप है, कौन सा बाप कहते हैं? दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप, ज्ञान का अखूट भंडार, और दूसरा मनुष्यों का बाप। वो अखूट भंडार नहीं है, है 5000 वर्ष के ड्रामा में अखूट भंडार नहीं है। हाँ, संगम युग में अकूट भंडार बाप समान अकूट बन जाता है, पुरुषार्थ करके। कैसा अकूट भंडार? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनको अकूट भंडार नहीं कहेंगे, सत्य का। ये सात धर्म पिताएं संघ के रंग में आकर के क्या होता है, है? कलास हो जाते हैं, इनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, इनके फॉलोअर्स का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, ऐसी नष्ट बुद्धि हो जाते हैं कि जिस मनुष्य षष्ठ वृक्ष की डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने लग पड़ते हैं, एटम बम बना करके उनको ज्ञानी कहें बड़े से बड़ा या मूर्ख कहें अज्ञानी। परंतु उन देहधारी धर्म पिताओं का बाप प्रजापिता पुरुषार्थ पूरा होने से पहले बड़े से बड़ा देह अभिमानी कैसी आत्मा है, बड़े से बड़ी देह अहंकारी आत्मा, उसको भी शिव बाप आकर के बड़े से बड़ा क्या बना देते हैं, राजयोग सिखा करके बड़े से बड़ा है आत्माभिमानी बनाए देते, आप समान बनाए देते हैं। तो मेरे भक्तों को बताओ, सुनाओ, मेरे भक्त कौन है? शिव के पुजारी? क्या कौन से मंदिर में जाके पूजा करते हैं? हैं? शिवलिंग की पूजा करते हैं शिवालय में जाकर, वो है मेरे पुजारी। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वो है देवताओं के पुजारी। और थर्ड क्लास पुजारी है जो भूत प्रेत बनने वाले कम कलाओं वाले देवताओं की पूजा करते हैं, वो भूतों के उपासक। यही बात गीता में बोली है। क्या मेरे भक्त मुझे ऊंचे से ऊंचे भगवंत से प्राप्ति करते हैं, देवताओं के पुजारी देवात्माओं से प्राप्ति करते हैं, और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो किसका पुजारी बनना है? है ऊंचे ऊंच को पकड़ना है या बिचौलियों को पकड़ना है? है भक्त हनुमान की पूजा करता है, हनुमान राम की पूजा करता है, राम शंकर की पूजा करता है, शंकर शिव को याद करता है। अरे जब मालूम है कि ऊंचे से ऊंचा करतार कौन है तो उसी को पकड़ना चाहिए ना। तो समझो मेरे भक्त कौन है? शिव के पुजारी, लक्ष्मी नारायण के पुजारी हैं, राम सीता के पुजारी हैं, वो भी भक्त हैं। परंतु पहले किन को पकड़ो? जो है जो मेरे भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण के नहीं, भूत प्रेतों के भक्त नहीं, मेरे और मेरे बच्चों को। भगवान के बच्चे कौन है? है अरे भगवान के बच्चे देवता है। भगवान के बच्चे डायरेक्ट कौन है? देवात्मे, जिनको मैं वर्षा देता हूं। क्या वर्षा देता हूं? क्या लक्ष्य देता हूं? नर से नारायण बनो, नारी से लक्ष्मी बनो। ऐसे जो हैं, जो देखो उनको जल्दी जल्दी समझाओ। किनको समझाओ? है किनको समझाओ? मेरे भक्तों को समझाओ। मेरे भक्त माने कौन सी मूर्ति के भक्त हैं? कौन सी मूर्ति की पूजा करते हैं? है शिवलिंग की पूजा करते हैं, अव्यक्त मूर्ति की पूजा करते हैं, साकार सो निराकार की पूजा करते हैं। साकार और निराकार में भेद पैदा नहीं करते हैं। उनको जल्दी समझाओ। क्यों उनको जल्दी क्यों समझाओ? हैं? क्योंकि 63 जन्म उन्होंने उस साकार सो निराकार मूर्ति की उपासना की है। क्योंकि जो हैं भाई, देखो तुम पुजारी हो इन देवताओं के, अब भाषा गाया नहीं जाता है, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, खुद ही पूज्य बने और खुद ही अपने रूप की पूजा करने लगे। ये अच्छी बात है, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, सो तुम ही पूज्य थे, अभी तुम पुजारी बन गए हो। आओ हम तुमको बताऊं कैसे तुम पूज्य थे। कोई भगवान पूज्य से पुजारी थोड़े ही बनता है, हैं? शिवलिंग जिसकी तुम पूजा करते हो है, वो किसका रूप है, हैं? पहले पहले किसने पूजा की शिवलिंग की? विक्रमादित्य ने पूजा की, परंतु उसको ये पूजा करने का तरीका किसने बताया? उसने अपनी बुद्धि से पूजा करना शुरू किया या कोई से समझ ली? तो जिससे समझ ली वो ही है, पूज्य भी बनता है और शिवलिंग के रूप में पूज्य बनने के बावजूद भी पहले पहले पुजारी भी बनता है। बाकी कोई भगवान थोड़े ही पूज्य बनता है। मंदिरों में भगवान अपनी पूजा लेते हैं, हैं? भगवान पूजा लेते हैं? जो पूजा लेता है सो पूजी बनता है। तो शिवलिंग का जो रूप दिखाया है, मूर्ति दिखाई है, वो कौन सी आत्मा का यादगार है? अरे इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया है, शिवलिंग जो है, जो शंकर लिंग रामलिंग नहीं कहा जाता है, भले भक्ति मार्ग में कहते हैं रामलिंग स्वामी, लेकिन कौन से प्रदेश में ज्यादा यादगार है रामलिंगम जी, है? अरे दक्षिण भारत में या नॉर्थ इंडिया में, है? दक्षिण भारत में रामलिंग की ज्यादा यादगार है, उसमें भी आंध्र प्रदेश जैसे अंधरों का प्रदेश, क्या अंधेरे लगड़े की कहानी सुनी? कौन है वो मुख्य आत्मा अंधेरे है? कौन है? लक्ष्मी। सागर के सबसे नजदीक रहने वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश, लेकिन अंधा है, बहुत तूफान आते हैं माया के। तो वो भक्त समझते हैं कि रामलिंग भगवान है, रामलिंगम के मंदिर बनाए भक्तों ने बनाए या ज्ञानी ने बनाए, है? आंध्र प्रदेश को कोई भक्तों नहीं बनाए होंगे अंदरों ने, बाकी कोई रामलिंगम भगवान नहीं होता है, माना जो शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है, जो पुरुषार्थ करके शिव समान बनता है निराकारी स्टेज धारण करने वाला, इंद्रिय जीत बनता है, वो बनने वाली आत्मा कोई भगवान नहीं है। भगवान बनाने वाला है या बनने वाला है? है तो कौन है भगवान? सिर्फ निराकार सदाशिव भगवान है या जो पुरुषार्थ करके संपूर्ण निराकारी भी बनता है? और 5000 वर्ष के ड्रामा में संपूर्ण साकारी भी बनता है वो आत्मा। उन दोनों के बीच में भगवान कौन है? हाँ? कौन है?
पुरुषार्थ करके जो साकार
है, पुरुषार्थ करके जो साकार स्वरूपधारी निराकारी स्टेज में टिक जाता है, उसी की यादगार शिवलिंग है। शंकर लिंग इसलिए नहीं कहा जाता कि शंकर तो पुरुषार्थी है या संपन्न रूप है, पुरुषार्थी है, याद में बैठा है, जरूर अपने से ऊंचे को याद करता है। तो उसका परिचय देना है त्रिमूर्ति के चित्र में। भगवान तो सदैव एक रस है। क्या कहा? जो भगवान कही जाने वाली आत्मा है वो सदा किस रूप में है? है सदा शिव है या कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी भी बनती है? है सदा शिव है, सदा एक रस है। जिसको अव्वल नंबर आप समान बना करके अल्लाह अव्वल दीन अर्थात धर्म की स्थापना करता है, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है, वो भगवान अलग है। जो सदैव आत्मिक रूप में है, सदा शिव है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो देह अहंकारी है या सदा आत्माभिमानी है? है जिसमें प्रवेश करता है, है हाँ, पतितम कामी कांटे में शिव अवतार लेते जब तक, संगम युग तब तक, तो जिस मुकर्रर रथ में वो सदा शिव आता है उस रथ की यादगार है शंकर। रथ साकार को कहा जाता है, उसमें आत्मा रूपी वो तीसरा नेत्र है। क्या कहा जाता है? हैं? सदा शिव कहा जाता है। वो तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है, सदा शिव अखूट ज्ञान का भंडार। आज भी और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा ज्ञान का भंडार है या फूटने वाला है? है? सदा है, फूटता नहीं। पतितम कामी कांटा नहीं बनता है? बनता है तो अखूट कहां हुआ? आत्मा भगवान की एक होगी या दो आत्माएं होंगी? है, एक ही आत्मा होगी। तो वो ऊंचते ऊंचे भगवंत है तो एक ही, लेकिन वो एक इसकी मान्यता संसार में तब होती है जब प्रूफ और प्रमाण दे। क्या प्रूफ और प्रमाण है? क्या प्रूफ दे? वो देवताओं की तरह सिर्फ पवित्र है या पर पवित्र है? हैं? परम पवित्र। वो सिर्फ संगम युग की यादगार है। संगम युग में वो मुकर्रर रथधारी आत्मा पुरुषार्थ करते करते अंत में बाप समान पवित्र बन जाती है, परम पवित्र। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से बनती है या सिर्फ कहने मात्र है? प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से बनती है, इसलिए उसको शिव समान बनने के कारण शिवलिंग कहा जाता है। उस समय वो शंकर नहीं है, मूर्तिमान। शंकर की मूर्ति शिव के मंदिरों में देवताओं के बीच में रखी जाती है। और शिवलिंग है, शिवलिंग मुख्य स्थान पर बीच में रखा हुआ है बाप के रूप में। परिवार में सर्वोपरि सत्ता किसकी होती है? बाप की होती है। तो शिव का परिवार है शिवालय। कैसा आलय? शिवालय, जहां सब एक की मान्यता करते हैं। वो एक जिसकी मान्यता करते हैं, मान्यता करने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके फॉलोअर्स की तरह एक निराकार आत्मा को मानने वाले हैं या साकार में निराकार को मानने वाले हैं? है? सिर्फ निराकार को मानने वाले, साकार में निराकार को मानने वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले। उनकी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, निवृत्ति मार्ग की याद नहीं। तो वो भगवान जो संसार में भगवान के टाइटल से माना जाता है, वो प्रैक्टिकल में भगवान है। जैसे प्रैक्टिकल में धनवान होते हैं, धनवान धन के बड़े से बड़े साहूकार होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसे ही वो भगवान क्या है? है प्रैक्टिकल जीवन में भगवान का स्वामी है। ऐसा प्रैक्टिकल में भगवान दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र नहीं बनता। सौ के ऊपर कंट्रोल करेगा, 200 के ऊपर कंट्रोल करेगा। 200 250 करोड़ मनुष्य आत्मा है, क्राइस्ट वाली आत्मा को अपना भगवान मान लेती है, लेकिन देहद का बाप है क्राइस्ट। हद में है या बेहद में? हद में है। और भगवान तो बेहद का बाप। तुम सब मेरी सजनियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, और तुम सब नंबरवार पार्वतियां हो, पार लगाने वाली हो, विदेशी कन्याओं माताओं की तरह विषय सागर में, व्यवसागर में, विविचार के सागर में डुबोने वाली नहीं हो। क्या हो? पार्वतियां हो। वो भगवान जो एक रस रहता है, वो जन्म मरण में नहीं आता है। क्या कहा? वो भगवान के रूप में भगवान का पार्ट कब बजाता है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, कब? संगम में पार्ट बजाता है। तो जो संगम में पार्ट बजाने वाला भगवान का प्रैक्टिकल रूप है, शरीर के साथ प्रैक्टिकल कहा जाता है, वो भगवान जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। निश्चय रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु के चक्कर में नहीं आते हैं। भगवान पर निश्चय बैठा तो भगवान बाप का बच्चा बना, माना जन्म लिया, और अनिश्चय हो गया भगवान बाप के बच्चे को अनिश्चय हो गया तो मर गया या जिंदा है? मृत्यु के गाल में चला गया। तो देखो, वो भगवान जन्म मरण में नहीं आते हैं, हैं वर्तमान पास्ट के लिए बोला या भविष्य के लिए बोला? है माने वर्तमान के लिए, माने संगम युग के लिए बोला। ये आते हैं। कौन आते हैं? ये ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स जन्म मरण के चक्र में आते हैं। आते हैं या नहीं आते हैं? इसलिए बोला सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कृष्ण की आत्मा आती है। अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय, भाग जाते हैं गुलजार दादी में। अनिश्चय आता है तब भागते हैं या निश्चय बुद्धि होते हैं तब भागते हैं? 84 जन्म की कहानी पूरी होती है। बाबा को समझ में नहीं आया। अच्छा चलो बच्चे, म्यूजिक बजा। बाबा बोले बेचारे सर्विस नहीं करते। अच्छा जब म्यूजिक बजा तो बाबा ने क्या बोला? ये बेचारे क्या नहीं करते? सर्विस नहीं करते। क्या सेवा नहीं करते? हा? अरे मूल सेवा क्या है? बाप की पहचान। बाप को जानते हैं ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारी, जानते हैं। जब खुद ही नहीं जानते तो बाप की पहचान कैसे देंगे? देंगे, सर्विस करेंगे, पहचान देने की सेवा करेंगे? करेंगे? नहीं कर सकते। कितना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या बोला है? ये बिचारे कौन, एक है या बहुत है? है, ये एक की बात नहीं है, इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, इसकी गोद में पलने वाले जितने भी कम कुरियों वाले ब्राह्मण हैं, नौ धर्म है ना, नौ धर्मों में नौ कुरियों के ब्राह्मण हैं जो संगम में तैयार होते हैं, उनमें से अब्बल मबर कुरी को छोड़ करके सारे ही कुरियों के ब्राह्मण इनकी गोद में खेलते हैं। गोद में खेलते हैं माना कुखवंशावली है या मुखवंशावली है? कुख माने गोद, कुख माने कोख माने गोद। तो ये सारे के सारे बाबा लेखराज ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले कुखवंशावली ब्राह्मण है। ये कितना टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम सफल हुआ 80 साल सेवा की, भागदौड़ की, बड़े बड़े भाषण दिए, कॉन्फ्रेंस की, मेले मलाखड़े किए, या टाइम बर्बाद कर दिया है? जैसे 63 जन्म भक्ति की कोई फायदा नहीं हुआ और ही नीचे गिरते गए, ऐसे ही ये भक्ति मार्ग वाले भक्तों की शूटिंग कौन करते हैं, ये रिहर्सल कौन करते हैं? है? जो खुद बाप को नहीं जानते, नहीं पहचानते और दूसरों को भी बाप का पहचान नहीं दे सकते, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा को तो आता है, पता नहीं क्या भगवान आया है, और ये बेचारे भगवान से बाप से वर्षा नहीं ले सकते हैं। दुनिया को क्या कहते हैं, भगवान आया है या नहीं आया है? वो कहते हैं भगवान आया है, लेकिन खुद भगवान बाप से वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा, इसी जीवन में रहते रहते स्वर्ग का वर्षा नहीं ले सकते हैं। बाप का वर्षा माने जन्म सिद्ध अधिकार, बच्चा बाप के घर में जन्म लिया और बाप की मिल्कियत का क्या बन गया, अधिकारी बन जाता है, बाप के वर्षे का अधिकारी बन जाता है। ये तो बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देते हैं। और जैसे भक्त समझते हैं इस जन्म में हम भक्ति करेंगे, भक्ति का पुरुषार्थ करेंगे, अगले जन्मों में कहीं न कहीं हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी अंधश्रद्धा की पढ़ाई बेहद का बाप भगवान नहीं पढ़ाते हैं। अरे कोई टीचर कहे हम तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे, सर्जन बनाएंगे, इंजीनियर कहे टीचर के रूप में हम तुम्हें इंजीनियर बनाएंगे, भाई कब बनाओगे? तो इंजीनियर है या डॉक्टर है इसी जन्म में बनाने के लिए बोलता है या अगले जन्म में बनाएगा है? इसे अंधश्रद्धा कहेंगे या श्रद्धा विश्वास की बात कहेंगे? इसी जन्म में बनाना है, ये तो श्रद्धा विश्वास है, लेकिन भक्त अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें करते हैं। कहते हैं कि हम इस जन्म में पुरुषार्थ करते हैं, और अगले जन्मों में प्राप्ति करते करेंगे। ये शूटिंग करने वाले भक्त है, बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण अभी भी बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं है? क्या कहते हैं कि हम पुरुषार्थ यहाँ करते हैं, लेकिन देवी देवता कहाँ बनेंगे है? सतयुग में, अगले जन्म में देवी देवता बने। ये अंधश्रद्धा सिखाते हैं, अंधश्रद्धालु भक्त हैं। देह अभिमानी को गुरु बनाया हुआ है, किसको? दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य को गुरु बनाया हुआ है। भगवान विकृत पाठ पढ़ाएगा या निर्विकारी ज्ञान सुनाएगा है? निर्विकारी ज्ञान सुनाता है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास का नाम निशान नहीं, ऐसा धोबी नहीं है जो कहे कपड़े हमें दे दो अगले जन्म में धो करके दे देंगे। ये कैसा बाशरमैन है बेहद का। क्या कहता है? अपने कपड़े हमको दे दो। क्या करो? अपने कपड़े हमें दे दो, हम तुम्हें इन कपड़ों के बदले में नए कपड़े दूंगा, कंचन काया बना के दूंगा अगले जन्म में है? इसी जन्म में कंचन काया बना के दूंगा, निरोगी काया। अगले जन्म की बात नहीं है, इसी जन्म की बात है। भगवान बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं, तुम्हारी आत्मा रूपी बिठैया और शरीर रूपी नवैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। नैया को भी इसी विषय सागर कहो, विषय बैतरणी नदी कहो, पार ले जाएगा। और नैया में बैठने वाली बिठैया आत्मा को भी पार ले जाएगा। तो बाबा को ये बातें समझ में नहीं आई। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। तो बोला अच्छा चलो बच्ची म्यूजिक बजाओ। बाबा ने कहा बेचारे सर्विस नहीं करते, गीत गाते रहते हैं, ढोल बजाते रहते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा को तो आता है, बाबा बोल रहे हैं। उन्होंने फिर म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। नीचे अभी कितनी दफा लिखवाई दिया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे होती है वो लिखो, विष्णु द्वारा पालना कैसे होती है वो लिखो, द्वारा द्वारा माने कोई मीडिया है एक या नहीं है, है? नीचे में लाइन कैसे लिखो, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा नंबरवार कुरियों वाले ब्राह्मण धर्म की स्थापना या देवता धर्म की स्थापना? सिर्फ ब्राह्मण धर्म की स्थापना। नीचे लिखो, झंडे का चित्र बनाते हैं ना, तीन कपड़ों वाला झंडा, आज भी यादगार में कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे परिपूर्ण हमारा। उसमें ऊपर लाल कपड़ा शंकर, क्रांतिकारी की यादगार, सारी दुनिया में ज्ञान की क्रांति कर देता है। बीच में मध्यस्थ, विष्णु की पालना की यादगार, और नीचे है ब्रह्मा के रूप में हरा कपड़ा, स्वर्ग की हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। कहते हैं सावन के महीने में जब चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो जाती है, तो जो सावन के महीने में अंधा होता है उसे सारा जीवन क्या दिखाई देता है, हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो ये अज्ञान का अंधा बेचारा, अज्ञान का अंधा रहते हुए ही शरीर छोड़ गया, जीवन पर्यंत हरा ही हरा, सपना देखता रहा। तो बताया है इसकी नीचे की स्टेज है क्या, नीचे से ऊंचे तीन देवताओं की जो पुरियां हैं, उनमें नीची स्टेज का देवता कौन है, ब्रह्मा। मध्यस्थ स्टेज का देवता विष्णु, और सबसे ऊंची पुरी का देवता शंकर दिखाते हैं। तो नीचे लाइन में कैसे लिखो, अभी ये सिर्फ चित्र है तो भी अच्छा है, लाचार है फिर भी ये चित्र है, कौन लाचार है, है कौन लाचार है, है पुरुषार्थ पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है, पुरुषार्थ पूरा नहीं कर सकता, क्यों, स्वर्ग बनाने का जो पुरुषार्थ है वो प्रैक्टिकल में पूरा क्यों नहीं कर सकता है। हिम्मत बच्चे मदद बाप, और हिम्मत ज्ञान लेने से आएगी, ज्ञान की गहराइयों में जाने से आएगी, या ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे तो आ जाएगी। ये और इनके फॉलोअर्स समझते हैं गहराई में जाएंगे तो डूब जाएंगे, फिर भी बाप कहते हैं ये चित्र तो है, साथ में ये चित्र है मोस्ट प्रिंसिपल, सबसे चित्र मुख्य, ये ब्रह्मा तो है चित्र है, लेकिन इन ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ मोस्ट वैल्यूएबल चित्र कौन सा है, कौन सा है, शिवलिंग मोस्ट प्रिंसिपल है, सीढ़ी इसमें भी आ जाती है, कोई ने कोई नहीं आती है, नहीं थोड़े ही आती है, इस चक्कर में सीढ़ी भी आ जाती है, 84 भी इसमें समझा सकते हैं। बच्चों में अभी खिर नहीं है, अकल नहीं है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे नहीं बने हैं, बेअकल हैं, नाबालिग बुद्धि है या बालिग बुद्धि है, बच्चों में अभी खिर नहीं है, मतलब अच्छा मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।